अब आप देखिए कि सूरत अनूर आयत नंबर 58 से लेकर 64 तक, अब ये आखिरी आयत है और इसमें जो है वो जो सूरत के इब्तदा में अहकामात नाजिल हुए, तो बाज अहकामात ऐसे थे कि उनके सिलसिले में लोगों के दिलों में सवाल पैदा हुए, शकूक पैदा हुए बाज लोगों के जहनों में और उनके दिलों में, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो वजाहत की। अब आप देखिए कि ये जो आयत नंबर 58 है, इससे पहले अगर आपको याद होगा, आपने आयत नंबर 31 में वहां पे पढ़ा था सूरत नूर में कि घरों में दाखिल होने के लिए इजाजत लेने की शर्त लगाई गई कि सलाम करें और इजाजत जो है वो लेकर आए, और गुलाम और नाबालिग बच्चे जो थे उनको मुस्तस्ना रखा गया था। अब यहाँ पे इन पर भी ये पाबंदी आयत कर दी जा रही है। अब यहाँ पे इन पे भी ये पाबंदी आयद की जा रही है कि 3 औकात में ये भी इजाजत लिया करें। आयत नंबर 58 से फिर दोबारा अहकामे मुआशरत का सिलसिला शुरू होता है और सूरत नूर का ये हिस्सा कहते हैं कि ऊपर की जो तकरीर थी, जो पहले आपने शुरू में अहकामात ऐसे पढ़े थे पर्दे के बारे में और इजाजत के बारे में, तो कहते हैं कि ये इसके बाद नाजिल हुआ ये हिस्सा लोगों के सवाल पूछने पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। कितना खूबसूरत है ना आपका कुरानी नाम, मेरा ये कुरानी नाम, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से पुकारते हैं, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। कहाँ रह गए ए लोगों जो ईमान लाए हो? आइए अपने ईमान का जायजा लें कि सीने में दिल धड़कता है तो क्या दिलों के अंदर ईमान भी है जो कि कवी है और जानदार है, क्योंकि ईमान हरकत का नाम है। ईमान तो पारे की तरह है जैसे एक हरकत में ना, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना, फरमाया लियस्ताज़िनकुम, ली चाहिए के यस्ताज़िन कि वो इजाजत लिया करें कुम तुमसे, कि ऐ मोमिनो ऐ ईमान लाने वालों, लाजिम है चाहिए कि इजाजत लिया करें तुमसे। अल्लाजीना वो लोग जो, मलकत ए ईमानुकुम, मालिक है जिनके तुम्हारे दाएं हाथ, और मुराद हैं लौंडी और गुलाम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी और गुलाम तुमसे इजाजत लिया करें। वल्लजीना और वो लोग, लम यबलुगुल हुलुमा, जो नहीं पहुंचे बुलूक को, हुलुम हा लाम मीम जो है ये सने बुलूगत को कहते हैं। ये हुलुम जो है ये अकल के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब इंसान बालिग होता है तो इस उम्र में आमतौर पर अकल और तमीज आ ही जाती है। नंबर एक तो तुम्हारे लौंडी और गुलाम, और नंबर दो वल्लज़ीना वो लोग, लम यबलुगू जो नहीं पहुंचे, अलहुलुमा बलुगत को, मिनकुम तुम में से। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे, क्योंकि बालिगों का सा ख्वाब देखने की उम्र को नहीं पहुंचे, बालिग नहीं हुए, और लड़कियों के लिए जो है वो बालिग होने की जो निशानी है वो माहवारी मेंसिस का आना, और लड़कों के लिए जो है वो इह्तलाम। तो ये जो बच्चे हैं जो अभी बालिग नहीं हुए, तो क्या करें, कब इजाजत लें? सलासा मर्रात, 3 औकात में। लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम, जो तुम में से जो है वो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे, तो सलासा मर्रात, सलासा मर्रात, सलास जो है ये तीन को कहते हैं, सलासा भी कभी कहते हैं कभी सलात। और सलास देखें ये गिनती है और ये मुजक्कर गिनती है। और मर्रात जो है मर्तबा, ये मुअन्नस है। अरबी जबान में 3 से लेकर 9 तक ये कायदा होता है कि अगर अदद जो है मुजक्कर हो तो जो चीज गिनी जाती है वो मुअन्नस होती है, और अगर अदद मुअन्नस हो तो जो गिनी जाती है चीज वो उसके फिर उलट होती है। तो सलासा मर्रात, 3 मर्तबा ये आपसे इजाजत लेकर आया करे, 3 औकात में इजाजत लेकर आया करे। नंबर 1, मिन कबले सलातिल फजरी, सुबह की नमाज से पहले। नंबर 2, वहीना तदाउना सयाबकुम मिन जहीरती, वहीना और जब तदाउना बौद आइन के मानी होते हैं नीचे रखना उतार देना। तदाउना जब तुम उतार देते हो सयाबकुम अपने कपड़े, सा वो बा इसका रूट है, जब तुम उतार देते हो अपने कपड़े मिन जहीरती, और जोहर यानी दोपहर के वक्त, तो जब दोपहर के वक्त तुम अपने कपड़े उतार देते हो तो उस वक्त। और नंबर 3, व मिन बादे सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद। सलासो औरातिल लकुम, सलासु 3 दफा, या ये 3 जो वक्त हैं औकात हैं औरात पर्दे के हैं, लकुम तुम्हारे लिए। औरात जो है ऐन वो रा इसका रूट है और इसके मानी है खलल और नुकसान के। फिर ये लफ्ज ऐसी चीज पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा कि जिसका जाहिर करना और उसको देखना जो है वो पसंदीदा ना हो। औरत को भी कहते हैं क्योंकि औरत जिसको खुला रखना या उसका खुला रहना इंसान के लिए बायसे नंगो आर है, और इंसान उसे जो है वो छुपाना जरूरी समझता है। तो अरबी जबान में औरत के मानी है खलल और खतरे की जगह के, या जिसका खुल जाना आदमी के लिए बायसे शर्म हो, या जिसका जाहिर हो जाना उसको नागवार हो, या कोई चीज जो गैर महफूज हो, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो 3 मौके का जिक्र किया है कि इन 3 वक्तों के अलावा दूसरे औकात में नाबालिग बच्चे और घर के जो लौंडी और गुलाम हैं वो हर वक्त औरतों और मर्दों के पास उनके कमरों में या उनके तखलिए की जगह में बिला इजाजत आ सकते हैं। और अगर जो है इन 3 औकात के अलावा तुम किसी नामुनासिब हालत में हो और वो बिला इजाजत आ जाएं तो तुम्हें उन पर डांट डपट करने का हक नहीं है। फिर ये तुम्हारी हमाकत है, फिर ये तुम्हारी गलती है कि काम काज के औकात में तुम जो है नामुनासिब हालत में हो, फिर तुम कसूरवार हो। और लेकिन इन 3 औकात में जो है वो क्या करो कि तुम इनकी तालीम और तरबियत करो, इन्हें ये बात सिखाओ, इन्हें ये तहजीब और तालीम दो कि इन औकात में जो है ये लोग एहतियात करें, क्योंकि ये 3 औकात बेतकल्लुफी के और बेपर्दगी के हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि नमाज फजर से पहले और नमाज इशा के बाद, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि ये दोनों जो औकात हैं ये रात के औकात हैं। लेकिन ये जो दोपहर का वक्त है इसका भी यहाँ पे खास तौर पे जिक्र किया गया, क्योंकि अरब जो है वो गर्म मुल्क था और उस वक्त लोग कैलूला करते थे, और वैसे तो मतलब हर तरफ लोग जो है वो कैलूला करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने जो है वो इस बात की पाबंदी आयत की कि इन 3 औकात के अलावा जो है वो ये गुलामों को और नाबालिग बच्चों को जो है इजाजत लेने में कोई पाबंदी नहीं है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, और अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि ये तीन औकात तुम्हारे पर्दे के और खलवत के औकात है, और तुम अपने मखसूस लिबास में होते हो या एक खास हालत में होते हो जो मियां बीवी की हालत है, तो उसमें जो है फिर पसंद नहीं करते कि तुम्हें कोई जो है वो इस हालत में देख सके। तो फिर इसमें जो है वो अपने घर के जो बच्चे हैं जो नौकर चाकर हैं इनको बताओ कि वो दरवाजा नॉक किए बगैर जो है वो तुम्हारे पास ना आए, या तुम्हारी इजाजत के बगैर जो है वो ना आए। मुफस्सरीन कहते हैं कि खास तौर पे वो घर जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है या बहुत से लोग रहते हैं, तो वहां पे भी जो है वो जरूरी है कि दूसरों को बताया जाए कि बगैर नॉक किए या बगैर इजाजत लिए जो है वो कमरे में जो है वो दाखिल ना हो। और इसी तरह जैसे बाज घरों में बच्चों को नहीं बताया जाता, उनको एजुकेट नहीं किया जाता, तो जरूरी है कि गुलाम भी और बच्चे भी उन्हें जो है वो एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इन तीन औकात में जो है वो खावंद और बीवी के जो कमरे हैं, जैसे मियाँ बीवी का जो कमरा है, उसमें बगैर इजाजत के जो है वो दाखिल ना हो। देखिए कितना खूबसूरत है दीन इस्लाम, सलासो अवरातिल लकुम, ये तीन औकात तुम्हारे पर्दे के औकात हैं, लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादुहुन, इनके बाद अगर वो बिला इजाजत आ जाए तो लैसा अलैकुम नहीं है तुम पर, वला अलैहिम और ना ही इन पर, जुनाहुन कोई गुनाह, बादहुन इसके बाद, तवाफून अलैकुम बादुकुम अला बाद, तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। यहाँ पे जो है ये वजह बताई जा रही है, तवाफून अलैकुम बादकुम अला बाद। तो अब आप देखें कि तवाफूना यही इसका रूट है, त्वा वो और फिर फा, और इसके मानी चक्कर के होते हैं, जैसे तूफान होता है ना तूफान, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल यही इसका रूट है। इसी तरह ताइफा जो आता जाता है ग्रोह, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह तवाफ करना, तवाफ के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो है वो खाना काबा के गिर जो है वो चक्कर लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला इसकी रीजन बता रहे हैं कि हर वक्त एक दूसरे के पास जो है वो आना जाना होता है, तवाफूना तवाफूना आना जाना होता है। अब आप देख लें कि यहाँ पे खास तौर पर जो है वो तवाफून का जिक्र किया जा रहा है, और शब्द है ना इसके ऊपर, इसका मतलब है कि बकसरत आना जाना, यानी जो है वो नौकर चाकर हैं या बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्हें बार बार आना पड़ता है। अलैकुम बादुकुम अलाबाद, तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना पड़ता है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये बात बता दी कि बिला इजाजत इन तीन औकात में नहीं आ सकते और इसके बाद जो है वो आ सकते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुल हकीम, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात को वाजे करता है और वो जानने वाला और हिकमत वाला है। बड़ा ही खूबसूरत है कुरान का ये अंदाज कि अल्लाह ताला हक बात कहते हुए शर्माते नहीं है, और अल्लाह ताला ने जो है वो बंदों की तरबियत और इस्लाह के लिए कैसे कैसे अहकामात दिए, कितनी तरतीब के साथ, कितनी तदरीज के साथ, कितने हुस्न के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ, जहां पाबंदियों की जरूरत है वहां पे पाबंदियां लगा दी, और जहां पे रियायतों की जरूरत है वहां पे रियायतें दे दी, कि तीन औकात में इजाजत लेने की पाबंदी है, उसके बाद जो है कोई पाबंदी नहीं है, ताकि तबीयतें जो है उन पर शाक ना गुजरे, बच्चों को नौकर चाकरों को मुश्किल ना हो। तो फिर इससे क्या बात पता चलती है कि इस्लाम जो है ये ऐन दीने फितरत है, और जरूरत है इस बात की कि इस पर जो है वो अमल किया जाए। वाइजा बलागल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, वाइजा बलगा, और जब पहुंच जाए अल अतफालू बच्चे, मिनकुम तुम में से, अल हुलूमा अकल की हद को, यानी जब बच्चे जो हैं वो शऊर की हद को या बलूगत को पहुंच जाएं, फल यस्ताजनु पस चाहिए कि वो इजाजत लें, कमा इस्ताजन अल्लजीना मिन कबलहिम, उसी तरह जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते हैं। तो कमा जिस तरह इस्ताजना इजाजत ली, इजाजत हासिल करते हैं, अल्लजीना वो लोग, मिन कबलहिम जो इनसे पहले, और मुराद क्या है कि बड़े, यानी जैसे फिर बालिग लोग इजाजत लेते हैं तो फिर ये भी उसी तरह इजाजत लेंगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और वो अलीम और हकीम है। तो इससे भी ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ये जो तालीम और तरबियत के लिए ये जो खास तौर पर जो है वो अहकामात नाजिल किए हैं, तो इसका मकसद क्या है कि बच्चे हैं, गुलाम हैं, नौकर चाकर हैं, या फिर बड़े हैं, तो सबके लिए कुछ हदायात हैं, सबके लिए कुछ तालीमात हैं। तो जरूरत है कि किसी के कमरे में जाना हो या किसी के घर में जाना हो, तो उसमें जो है वो इजाजत लेना जो है वो जरूरी है। तो इससे ये बात पता चलती है कि घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, अपनों में भी और दूसरों में भी, जरूरत है इस बात की कि जो मुआशरती अहकाम और आदाब हैं उनका ख्याल रखा जाए। और बाज लोग जो हैं वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते। मुझे अक्सर एक औरत याद आती है, बहुत साल पहले एक दफा जब मैंने दौरा तफसीर करवाया तो वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे, यानी मैं ससुराल में रहती हूँ और मुझे अपना कमरे का दरवाजा भी बंद करने की इजाजत नहीं होती, और बगैर नॉक किए मेरी सास हमारे कमरे में आ जाती हैं। तो याद रखें कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो बड़े हों या छोटे हों, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो इजाजत लेकर जो है दूसरों के घरों में भी जाना है, और अगर घर के अंदर भी लोग बहुत से रहते हैं तो फिर इन तीन औकात में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते, खा वो घर का बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो ये है, अल्लाह ने अपनी आयात को हमारे सामने खोल कर बयान किया। क्यों? वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला है। फिर है आयत नंबर 60, इसमें बूढ़ी औरतों के लिए एक रुख्सत है। पीछे आपने आयत नंबर 31 में पढ़ा था कि औरतों को घर के अंदर किसी गैर महरम की मौजूदगी में हदायत दी गई थी ना, और उसमें एक हदायत क्या थी? वल यदरिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन, कि वो अपनी ओढ़नियों के आंचल से अपने गरेबान को ढांप लिया करें। अब आप देखिए कि अब यहां पे बूढ़ी औरतों को रुख्सत दी जा रही है। वल कवाइदु, कवाइद, और कवायद जो है इसका मतलब है कि बूढ़ी औरतें, असल में काफ ऐन दाल इसका रूट है और ये बैठने की हालत को कहते हैं। क़यामा व क़ऊदा, नमाज में होता है ना कि आप खड़ी होती हैं, क़याम में होती हैं, और जब आप बैठती हैं तशहुद पढ़ती हैं तो फिर क़ादे में होती है ना। और अल कवायद बुनियादों को भी कहते हैं ना, व इज़ यरफ़ाउ इब्राहीम अल कवायद मिन अल बैती व इस्माइल, आप पीछे पढ़ चुकी हैं, क्योंकि बुनियादें भी नीचे होती है ना, बिठाई जाती हैं। तो वल कवायदु, और बैठे रहने वालियां, बैठे रहने वालियां, तो कौन बैठी रहती हैं? आमतौर पे वो औरतें जो बूढ़ी हो जाती हैं और उम्र ज्यादा हो जाती है, जो निकाह के काबिल नहीं रहती, तो वल कवायदु बैठी रहती हैं, मीन नेसाई औरतों में से। और वो औरतें जो बैठी हुई हों, यानी जवानी से गुजरी हुई हों, बैठी हुई हों, अब ना निकाह के वो काबिल है, ना कोई हैज है, ना कोई कुछ भी अब नहीं है, मतलब कवायद मिन निसाई, और बैठी रहने वाली औरतों में से, अल्लाती अल्लाती, वो जो ला यरजूना निकाहन, जो निकाह की उम्मीदवार नहीं है, यानी अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, हैज भी नहीं है, और जो है वो जवानी की हद से गुजर चुकी हैं, तो ना वो विलादत के काबिल हैं। और क्योंकि आमतौर पे बड़ी उम्र की औरतें जो हैं उनके अंदर मर्द के लिए जो है वो जो जिनसी कशिश होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो किसी मर्द से निकाह की फिर ख्वाहिश मंद नहीं होती, और मर्द भी उनके लिए ऐसे जज्बात नहीं रखते। तो यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह तीला यर्जुना निकाहन, फिर अगर वो निकाह की उम्मीदवार नहीं है, फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, पस नहीं है ऐसी औरतों पर कोई गुनाह, अहीं यदाना सियाबहुन्ना, अगर वो अपने कपड़ों को उतार दें। तो वदा का मतलब होता है कि नीचे रख देना, उतार देना, सियाब जो है था वो बा सौप कपड़े को कहते हैं, और यहाँ पे सौप से मुराद चादरें हैं, कि वो अपनी चादरें जो हैं अगर उतार दें, इसका ये नहीं मतलब कि सारे कपड़े उतार कर अगर वो नंगी हो जाएं, ये मतलब नहीं है, बल्कि वो चादर जो आप सूरत अहज़ाब में पढ़ेंगी ना, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबी बहन, के वो अपनी चादर को अपने ऊपर डाल लें, या फिर ये सूरत नूर की जो आयत है कि वल यदरिबना बिखोमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन, तो पहले चादरें लेने के लिए कहा गया था ना, सूरत अहज़ाब में भी आप पढ़ेंगी और सूरत नूर आयत नंबर 31 में भी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ी उम्र में अगर वो अपनी चादरों को उतार देती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर एक शर्त बताई जा रही है, गैरा मुतबर्रिजातिन बिजीना, गैरा नहीं, मुतबर्रिजातिन नुमाइश करने वाली, जेबो जीनत करने वाली, बिजीना अपनी जीनत की। तो मुतबर्रिज जो है इसके माने क्या है, इसका रूट है बा रा जीम, और इसके माने होते हैं इजहार और नुमाइश के, किसी भी महल जो होता है कसर होता है तो उसके जो बुर्ज होते हैं ना उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बुर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नुमाया होना, उभरना, खुलकर सामने आना, किसी भी जैसे चौबुर्जी आप बोलती हैं, या किसी महल और इमारत के जो बुर्ज होते हैं ना दूर से नजर आते हैं, नुमाया होते हैं उभर कर, तो इसी तरह ये लफ्ज जो है इजहार और नुमाइश के लिए बोला जाता है। बारिज उस खुली कश्ती या जहाज को कहते हैं जिस पर छत ना हो और वो दूर से नुमाया हो। इसी तरह ऐसी औरत जो कि मर्दों के सामने अपना हुसन और अपनी आराइश और जेबो जीनत का इजहार करे, तो उसके लिए भी जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मुतबर्रिजात बिज़ीना। तो अब यहाँ पे जिन औरतों को कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी चादरें उतार दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर वो बूढ़ी हो जाती हैं, अगर निकाह के काबिल नहीं है, हैज नहीं आ रहा, औलाद के काबिल नहीं है, तो अगर वो जो है वो जैसे पर्दा करना या अपने आप को कवर करना, तो जाहिर कि बूढ़ी औरत जो है बुढ़ापे में इंसान जो है उसके लिए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है, तो अब वो चादर वगैरह को कैसे संभालेगी औरत, है ना, अपनी ओढ़नी चादर बुरका वगैरह। तो अब यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि अगर वो चाहे, अगर वो जेबो जीनत की नुमाइश नहीं करती, तो फिर उनको इजाजत है कि अगर वो बड़ी चादर जो है वो ना ओढ़े। तो इस आयत का मतलब ये है, यानी चादर उतार देने की इजाजत सिर्फ उन बूढ़ी औरतों को दी जा रही है जिनके अंदर बनठन कर रहने का शौक बाकी ना रहा हो। गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। अच्छा, अब बास बूढ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे में भी बहुत मेकअप करती हैं, बहुत तैयार होती हैं, उनको तैयार होने का और जीनत की नुमाइश करने का बहुत शौक होता है। तो अगर कोई बूढ़ी औरत है लेकिन वो जो है वो तैयार भी होती है और शौकीन भी बहुत है मेकअप कपड़े जेवर और इस तरह, तो फिर उसके लिए ये इजाजत नहीं है, क्योंकि शर्त क्या है पहली, वल कवायदु मिनन निसाई, कि पहली शर्त यह है कि जो जवानी से गुजर गई हो, दूसरी शर्त यह है कि निकाह के काबिल नहीं रही, यानी अब उनके अंदर कोई भी ऐसी जिनसी ख्वाहिश वगैरह भी नहीं है, और तीसरी बात यह है कि गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, यानी वो जेबो जीनत का इजहार भी करने वाले नहीं है, तो फिर उनके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है अगर वो बड़ी चादर जो है अगर वो नहीं ओढ़ती। तो यहाँ पे बूढ़ी औरतें जो हैं अगर बड़ी चादर या बुरका इस्तेमाल ना करें, मतलब उसके बजाय वो छोटी चादर जिसको वो आसानी से संभाल लें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर जो है वो जिनसी कशिश पाई जाती है या मेकअप की शौकीन है, ये खूब तैयार श्यार होती हैं, बनाव सिंगार करती हैं, तो वो इस रियायत से फायदा नहीं उठा सकती, फिर उनके लिए ये तख़फीफ़ नहीं है, उनको फिर मुकम्मल पर्दा करना होगा। अच्छा, ये एक रियायत है, ये एक इजाजत है, लेकिन तकवा क्या है, يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَّهُنَّ, اگر وہ جو ہے وہ عفت مانگے. يَسْتَعْفِفْنَا عَيْن فَا فَا, اس کے معنی ہے کہ عفت یعنی بچ کر رہنا, جیسے اگر وہ اپنی حیا جو ہے اس کی وہ حفاظت کرے. وَأَنْ, اور اگر وہ حیاداری برتیں, خیر اللہن, تو یہ ان کے حق میں زیادہ اچھا ہے. تو وہ جو پیچھے رعایت دی تھی نا, یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ بوڑھی ہیں, وہ زیب و زینت کا اظہار بھی نہیں کرتی, لیکن پھر بھی اگر وہ چادر اوڑھے ہی رہیں اور اپنے آپ کو چھپا کر ہی رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر ان کے لیے مشکل ہے, وہ بوڑھی ہیں اور ان کو چادر برقع وغیرہ سنبھالنا اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پھر ان کے لیے اس بات کی رعایت ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سب کچھ پتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 61 ہے, آیت نمبر 61 میں یہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے, کیونکہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام سوشل آزادی کو محدود کرنا چاہتا ہے. اب کوئی عزیز قریب رشتہ دار دوست جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ نہیں جا سکتا, اور بعض لوگ تو معذور اور مجبور بھی تھے, اور اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھروں پر گزارا کرتے تھے. اب انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہماری آزادی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے. تو اور پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دور جاہلیت میں غیر محدود آزادی تھی, بے قیدی تھی. اور پھر جب سورت نور کے احکامات نازل ہوئے, سورت احزاب میں احکامات نازل ہوئے, تو بعض پابندیاں لوگوں کی طبیعتوں پر بھاری گزری. تو ان لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کی ہے کہ یہ جو احتیاطی پابندیاں ہیں, اس کو عائد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے روابط کٹ جائیں یا جو اندھے لنگڑے مریض لوگ ہیں وہ بے سہارا ہو جائیں, یا لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں آئے جائیں نہیں یا ملے جلے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ کہا کہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی گناہ, حرج گناہ. اور آما جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ اندھے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا جو ہے, ولا علل آرجی, یا پھر کوئی لنگڑا, ولا اور نہیں, علل آرجی کسی لنگڑے پر, نہ کسی اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی لنگڑے پر, ولا علل مریدی اور نہ ہی کسی مریض پر, حرجن کوئی حرج. تو کسی بھی اندھے لنگڑے یا مریض پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کسی کے گھر سے کھا لیتا ہے, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور نہ تمہارے اپنے اوپر جو ہے کوئی حرج ہے, أَن تَأْكُلُوا, کہ تم کھاؤ, مِن بُيُوتِكُمْ, اپنے گھروں سے. نمبر دو, او بیوت آبائکم, یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماں نانی کے گھر سے, او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, او بیوت عمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, او بیوت عماتکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, یا اپنے جو ہے وہ ماماؤں, یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے, او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, او ما ملکتم, یا وہ جن کے جو ہے وہ سپرد کر دیا تم نے, یا وہ ما جو ملک تمہاری سپردگی میں ہے, جن کے مالک ہوئے, مفاتحہ, اس کی چابیاں, یعنی یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہاری سپردگی میں ہیں, او ما ملک تم, کہ سپرد کر دیا تمہارے, مفاتحہ, ان گھروں کی چابیوں کو, او صدیقکم, یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 11 گھروں کو گنوایا گیا ہے, यानी अंधा, लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और आप देख लें कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अंधे, लंगड़े और मरीज के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो माजूर लोग थे इनके साथ जो है मुआशरे में जो उस वक्त लोग थे तो क्या करते थे कि सहाबा जब जिहाद वगैरह के लिए जाते तो अपने घरों में माजूर अफराद को बिठा जाते और उन्हें घर से खाने पीने की इजाजत भी देते। मगर माजूर अफराद जो थे अब वो इस खुदारी से रहते नहीं थे कि शायद ये हमें जायज भी है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि जो है वो यानी माजूर लोग जो है वो तुम्हारे घरों से खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी राय ये भी है कि तंदुरुस्त सहाबा माजूरों के साथ खाना जो है वो खाने से डरते थे कि शायद हमारी तरह जब वो आम रफ्तार से नहीं खाएंगे तो हम कहीं उन पे जुल्म ना कर लें। तो अल्लाह ताला ने जो सहाबा की हद दर्जा की जो एहतियात थी उस सिलसिले में भी कहा कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं अगर तुम उनके साथ मिलकर बैठ कर खाते हो। फिर तीसरी राय ये भी आती है कि जो माजूर लोग थे बाज़ औक़ात बीमार माजूर लोगों के साथ लोगों को बैठकर खाना मुश्किल लगता है ना, तो कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर तुम उनके साथ मिलकर बैठकर जो है वो खाते हो। तो आयत का पहला हिस्सा जो है वो बीमार, लंगड़े, अंधे और माजूर लोगों के बारे में है कि जहां तक माजूर आदमी है वो अपनी भूख को किसी के भी घर से रफा कर सकता है, हर जगह से खा सकता है। उसकी माजूरी जो है ना उसकी माजूरी की वजह से सारे मुआशरे पर उसका हक कायम हो जाता है। माजूरी ऐसा उजर है कि वो हर घर से और हर जगह से खा सकता है, जहां से भी उसको खाने को मिले तो इसकी इजाजत है। अच्छा, आयत का पहला हिस्सा तो ये है। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है ये आम लोगों के बारे में है। अब आप देखें कि कुरान की जब इखलाकी तालीमात जो थी वो पेश की गई और अरब की जहनियत में एक जबरदस्त इंकलाब पैदा हुआ। अब उस वक्त जो है लोगों के अंदर हलाल और हराम, जायज और नजायज जो है उसकी तमीज के बारे में इंतहाई हिस जो थी वो नाजुक हो गई, ज्यादातर लोग सोचने लगे। तो और बाज लोग ये भी सोचते थे कि जब तक घर वाले इजाजत न दें तो समझते थे कि किसी रिश्तेदार दोस्त के घर खाना भी नजायज है। तो ये बात तो सही थी कि हराम नहीं खाना, लेकिन अब जब तक लोग इजाजत ना दें तो समझते थे कि खाना जायज ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात जहन नशीन करवाई कि जहां तक तुम्हारे अपने घरों का ताल्लुक है तो उसमें तो इजाजत लेने वाली देने वाली कोई बात ही नहीं है, यानी वहां पे अपने घरों से खा सकता है। तो सबसे पहले अपने घर का जिक्र आया। नंबर एक क्या कहा, वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम्हारे ऊपर इसमें कोई हरज नहीं है, कोई मजायका नहीं है कि नंबर एक तुम अपने घरों से खाओ। बुयूत बैत वाहिद है, बुयूत इसकी जमा है। नंबर दो, ओ बुयूत अबाएकुम, या तुम अपने बाप दादा के घरों से। अबाएकुम का रूट है अलिफ बा वाओ, अबू उससे अबा यानी अबाओ अजदाद, दादा नानी वगैरह। फिर ओ बुयूत उम्महातिकुम, और उम्महात जो है इसका रूट भी अलिफ मीम मीम ओम और उम्महात, और मुफस्सरीन कहते हैं कि इसमें जो है फिर वो दादी नानी वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, तो उनके घरों से सबके से खाया जा सकता है। नंबर चार, ओ बयूते इखवानेकुम, या अपने भाइयों के घरों से। तो अखू होता है ना इसका रूट अलिफ खा वो हमजा खा वो, और फिर उसी से इखवान जमा है। नंबर पांच, ओ बयूते अखावातेकुम, इसका रूट भी हमजा खा वो है, या अपनी बहनों के घरों से, इख्वात बहनों को कहते हैं ना। ओ बयूत आमामेकुम, ये नंबर छह है, और ऐन मीम मीम चचा को कहते हैं अम, तो या अपने चचाओं के घरों से। नंबर सात, ओ बयूत अम्मातेकुम, या अपनी फूफियों के घरों से, ऐन मीम मीम। नंबर आठ, ओ बयूत अखवालेकुम, खा वो लाम इसका रूट है, और नंबर आठ है, या फिर अपने जो है वो मामुओं के घरों से। नंबर नौ, औबयूते खालातेकुम, इसका रूट भी खाव व लाम है, या अपनी खालाओं के घरों से। तो इन सब के घरों से जो है वो खाने की इजाजत है, ऐसा नहीं है कि साहिबे खाना बकायदा इजाजत दें तो खाएंगे और उनकी इजाजत के बगैर खा लिया तो कोई खयानत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और नंबर 10, ओ मा मलक तुम मफातिहा हो, या फिर जो है वो घर जिनकी कुंजियां तुम्हारे सुपुर्द हों। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद है, ऐसा होता है ना कि कभी कोई आपको अपनी चाबी दे देता है तो बाज़ुकात फिर लोग ये समझते हैं कि मुझे इजाजत नहीं है, मैं इसे खा नहीं सकता या खा नहीं सकती, तो कहा कि तुम वहां से खा सकते हो। जैसे आप यूं समझ लें कि कोई माली है और उसके पास जो है बाग है, तो अब बाग उसकी सुपुर्दगी में है ना, तो बाग में से फल तोड़कर खा सकता है। इसी तरह कोई चरवाहा है, वो बकरियों को जो है वो चरवाता है, चराता है, तो अब वो बकरियों का दूध जो है वो धोकर पी सकता है। इसी तरह कोई नान बाई है, किसी होटल में वो नान पकाता है, तो अब ये नहीं है कि मालिक इजाजत दे तो रोटी खाए, तो इजाजत के बगैर खाना खा सकता है। इसी तरह आपके घर में कोई नौकरानी है, वो काम करती है, तो अब ये नहीं है कि जरूर इजाजत हो तो वो खाएगी, तो वो खा ले, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये है इसके माने कि तुम्हारे मातहत जो हैं उस चीज से खा सकते हैं जिस चीज पर तुमने उनको निगरान बनाया है, और अगर तुम ऐसे लोगों के हाथ से भी कुछ खा लो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि तुम उसके कफील हो। दोनों बातें हो सकती हैं। नंबर 11, और उस सदीक कुम, या फिर अपने दोस्तों के घरों से, क्योंकि वो दोस्त जो बेतकल्लुफ हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनकी गैर मौजूदगी में, जैसे पीछे से बच्चे, बीवी या घर वाले कुछ खाने को दे दें, या आप चले जाएं और वहां कुछ मौजूद हो, आप कुछ खा लें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अंता कुलू जमीयन औ अशताता, इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या फिर अलग अलग खाओ। अब इस सिलसिले में भी कदीम जमाने में अहले अरब में बास कबीलों की ये आदत थी कि हर एक अलग अलग खाना लेकर खाता था, वो मिलकर एक ही जगह खाना खाने को बुरा समझते थे, जैसा कि हिंदुओं के यहाँ आज भी बुरा समझा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है इस पाबंदी को खत्म किया जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अलग अलग बैठकर खा लो या फिर ये कि साथ मिलकर जो है वो खाओ, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये जो तंगी थी या जो ये रस्म थी उसको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया और कहा कि दोनों तरह जो है वो जायज है, अलबत्ता इकट्ठे होकर खाना ये ज्यादा बायसे बरकत है और हमें अहदीस से भी इसका पता चलता है। तो इस्लाम में क्या है कि अगर इकट्ठे होकर खाते हैं तो इसमें बरकत है, अगर कोई अलग भी खाना चाहे तो इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। तो अशताता ये लफ्ज जो है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, ये शीन ताता, और इसके माने होते हैं अलग अलग। फैजा दखल तुम बुयूतन, अलबत्ता जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो, तहियतन मिन इंदिल्लाही मुबारकतन तय्यिबा, तहियतन तोहफा दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई, तहियतन मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ तोहफा, मुबारकतन बाबरकत तय्यिबा पाकीजा। तो अब यहां पर जो है खास तौर पर ये हदायत दी जा रही है कि घरों में दाखिल होते वक्त जो है वो असल बात क्या है कि सलाम करके दाखिल हुआ करो, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और पाकीजा तरीकाए तहिया और दुआ है, बाहमी ताल्लुकात की खुशगवारी में इजाफा होता है, शैतान की जो दर अंदाजियां हैं उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये जो पाबंदी है ना सलाम करने की, इसको तुम अपने ऊपर बोझ ना समझना। तो बाज लोग अपने घर जब दाखिल होते हैं ना सलाम नहीं करते, तो अपने घर में दाखिल हो तो भी जरूर सलाम करें, अपने लोगों को सलाम करें, दोस्तों को सलाम करें, तो सलाम जो है इससे मोहब्बत बढ़ती है, ईमान मुकम्मल होता है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताकिलून, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझबूझ से काम लोगे। अब ये आयत नंबर 62 से آخری ہدایات ہیں جو کہ مسلمانوں کی جماعت کا نظم و ضبط پہلے سے زیادہ کسنے کے لیے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. کیونکہ اجتماعی کاموں میں جو مخلص مسلمان تھے وہ تو ساتھ دیتے تھے, لیکن جو منافق تھے وہ کسک جاتے تھے, اجازت لیے بغیر ہی چلے جاتے تھے. تو کہا کہ انما المؤمنون, بے شک مومن تو اصل میں وہ ہیں, الذین آمنوا باللہ, جو ایمان لائے اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر. تو اصل مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پر جو ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, کہ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وَإِذَا كَانُوا, اور جب وہ ہوتے ہیں مَعَهُ رسول کے ساتھ, عَلَىٰ أَمْرٍ, کام پر, جَامِعٍ اجتماعی, تو جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے موقع پر ہوتے ہیں, لَمْ يَذْهَبُوا, تو نہیں جاتے, حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ, جب تک کہ اسے اجازت نہ لے لیں. جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خندق کھودنے کے لیے بلایا ہوا تھا, تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو خندق کھود رہے تھے, لیکن جو منافق تھے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل رہے تھے. تو بے شک مسجد کی تعمیر ہو یا اجتماعی مفاد کے مسائل ہوں یا کوئی اجتماعی کام ہو, تو اب یہاں پر جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ موقع جنگ کا ہو یا حالت امن کا ہو, بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ, ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں. اور نمبر دو, مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اس کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ کسی بھی اجتماعی مقصد کے لیے اگر مسلمان کہیں جمع ہوں تو وہ بغیر جو ہے وہ امیر کی اجازت کے بغیر انہیں جو ہے وہ اپنے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس میں جو ہے یعنی آج کے دور میں پھر کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے منافق جو تھے وہ اجتماع سے یا کاموں سے اجازت کے بغیر نکل جاتے تھے, تو اب اہل ایمان جو ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو جمعہ, عیدین کے اجتماع میں یا امن یا جنگ یا کسی بھی موقع پر مسلمانوں کو بلایا جائے, ان کا امیر یا انچارج یا ان کا سربراہ یا استاد یا کوئی بھی ان کو بلائے, تو بغیر اجازت کے وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے. ان الذین یستاذنون کا, بے شک آپ سے جو اجازت مانگتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہ وہی تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی اگر کبھی کسی کو کوئی عذر ہو, کسی کو جانا پڑ جائے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے اجازت لے کر جاتے ہیں. یہ ایمان لانے والوں کا طریقہ ہے کہ عذر ہونے کی شکل میں وہ اجازت لیتے ہیں. فائزستہ زنو کا لباد شانہم, پس اگر وہ آپ سے اجازت مانگے, لباد کسی بھی, شانہم اہم کام کے لیے, تو شان جو ہے یہی اس کا روٹ ہے, شین حمزہ نون, اور یہ کہتے ہیں اہم کام کو. تو اگر ایمان لانے والے کسی اہم کام کے معاملے میں اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو کیا کریں, فَذَلِّ مَن شِئْتَ مِنْهُمْ, تو پس آپ اجازت دے دیں ان میں سے جس کو چاہیں, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کریں. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی ضرورت بیان کرنے پر بھی اگر پیارے رسول جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے یا دے دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. بالکل اسی طرح یعنی امیر جماعت یا استاد یا جو سربراہ ہے, اگر اجتماعی کاموں کے موقع پر کوئی اپنی انفرادی ضرورت کو پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا یہ مشکل ہے, لیکن جو سربراہ ہے, انچارج ہے, استاد ہے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر مومن کو شکایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انفرادی ضرورت پر جو ذمہ دار ہے اس نے اجتماعی ضرورت کو مقدم رکھا ہے, تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے, شکایت نہیں کرنی چاہیے. یعنی اجازت مانگ سکتے ہیں عذر ہونے کی شکل میں, لیکن اگر اجازت نہ ملے तो फिर जो है वो बुरा नहीं मानना चाहिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे खास तौर पे कहा जा रहा है कि चाहो तो इजाजत दे दो, यानी इजाजत जब वो मांगे चाहो तो इजाजत दे दिया करो, लेकिन ऐसे लोगों के हक में दुआए मगफरत किया करो, वस्तगफिरल्लाहुमुल्लाह। इससे ये बात पता चलती है कि यानी इजाजत तलब करना, और इजाजत देने पर रसूल अल्लाह को ये कहना कि आप उनके लिए दुआए मगफरत करें, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये इज्तमाही काम में अपनी इंफरादी जरूरत को मुकद्दम रखना ये गुनाह है। बहानाबाजी करना और जो है वो वहां से निकलना निकलना कि निकल जाओ मैं यहां से, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि, और इसके साथ ही यानी जो बाकी फिर जैसे जमात के अमीर हैं या जिम्मेदार हैं या इंचार्ज हैं उनके, अब उनको सिर्फ इजाजत ही नहीं देनी चाहिए बल्कि उसके साथ साथ ये कहना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। यानी इस वक्त मुसलमानों का एक इज्तमाही काम था और तुम जो है उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हो, और वाकई जरूरत है अगर तुम्हारी कि तुम जाना चाहते हो, तो इजाजत देने के साथ उसके लिए अल्लाह से इस्तगफार करो, क्योंकि इजाजत मांगना कोई पसंदीदा चीज नहीं थी। यानी उन्हें नेकी के काम में वहां पे मौजूद होना चाहिए था, इज्तमाही जरूरत को इंफरादी जरूरत पर मुकद्दम समझना चाहिए था। अब यहाँ पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इंसानी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने इजाजत दे भी दी है, जिसको आप इजाजत देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इस कमजोरी पर उनके लिए अल्लाह से इस्तगफार करें, इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है। तो इससे जो है ये बात पता चलती है कि जमाती निजाम से मुतल्लिक है ये आयत। और जैसे जैसे एक क्लास है तो उसमें बाज लोग जो है वो छुट्टी करते रहते हैं, या आ जाते हैं तो जल्दी जाना चाहते हैं, या कोई भी एक अहम मुसलमानों का इज्तमाही जो है वो काम है, और बाज लोग जो है वो उस मौके पर वहां से खिसकना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। तो अपनी इंफरादियत को इज्तमाहियत के लिए कुर्बान करना चाहिए। ला तजअलू दुआ अर-रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम वादा, मुसलमानों अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझ बैठो। ला तजअलू दुआ अर-रसूली, तो ना समझ बैठो रसूल की दुआ को बैनकुम अपने दरमियान का दुआई, जैसे के दुआ है बादकुम वादा, बास का बास को बुलाना। यहाँ पे दुआ का लफ्ज अहम है, दाल एंड वॉ इसका रूट है, और इसके मानी है बुलाने के, और इसके मानी है दुआ करने के और पुकारने के। तो इसके एक मानी तो ये हैं, यानी इस आयत के तीन मतलब बयान किए जाते हैं। नंबर एक, कि रसूल के बुलाने को आम आदमियों में से किसी के बुलाने की तरह ना समझो। यानी अगर रसूल आपको बुला रहा है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा गैर मामूली अहमियत रखता है। दूसरा, कोई बुलाए आप ना जाएं तो आजादी है, लेकिन रसूल बुलाए और तुम ना जाओ और दिल में तंगी महसूस करो तो ईमान खतरे में है। इसके दूसरे मानी है, यहाँ पे दुआ के मानी है, कि रसूल की दुआ को आम आदमियों की सी दुआ ना समझो। वो तुमसे खुश होकर दुआ दें तो तुम्हारे लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, और अगर वो नाराज होकर बददुआ दे दें तो तुम्हारे लिए इससे बढ़कर बदनसीबी कोई नहीं। तीसरे, इसके मानी ये बयान किए जाते हैं कि रसूल को पुकारना, जैसे तुम रसूल को पुकारते हो तो आम आदमियों की तरह जैसे एक दूसरे को पुकारते हैं ना, ऐसे नहीं रसूल को पुकारो नाम लेकर बुलंद आवाज से चीखते चिल्लाते हुए, बल्कि अदब और एहतराम के साथ जो है वो रसूल को पुकारा करो। तो ये इसके तीन मानी बयान किए जाते हैं कि रसूल के बुलावे को आम बुलावा ना समझो, अहमियत दो और जाओ। नंबर दो, रसूल की दुआ या बददुआ जो है, यानी दुआ खुशकिस्मती है और उनकी बददुआ जो है ये बदबख्ती की अलामत है, बदनसीमी। और तीसरा, रसूल अल्लाह को तुम जब पुकारो तो अदब और एहतराम के साथ, ऐसे नहीं कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आओ, ऐसे नहीं कि बार बार आप आवाजें दो, बल्कि इंतजार करो ताकि वो अपने कमरे से हुजरे से जब बाहर निकले तो फिर उनसे बात करो, और यानी बेतकल्फी से नहीं बल्कि अदब और एहतराम के साथ रसूल को तुम पुकारो। कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना, तहकीक अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है, यतसल्लुन मिनकुम लिवाजा। यहाँ पे यतसल्लल और लिवाजा दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, और यतसल्लल जो है इसका रूट है सीन लाम लाम। इसके मानी होते हैं सल के, कि एक चीज का दूसरी से खींच लेना, जैसे तलवार का नियाम से बाहर निकालना, घर से कोई चीज चोरी छुपे खिसका लेना। तो तसल्लल इसके मानी होते हैं चुपके से खिसक जाना, जैसे तलवार को नियाम से खामोशी से निकाला जाता है ना, तो अल्लाह खूब जानता है उन लोगों को, ये तसल्लुना जो खिसक जाते हैं, मिनकुम तुम में से। लिवाजा, लिवाजा जो है इसका रूट है लाम वो जाल। इसके मानी है किसी चीज की आड़ लेना और उसके पीछे छुप कर खिसकना। ये भी खिसकने के मानी में है, जैसे एक दूसरे की आड़ लेते हुए, पनाह लेते हुए जो है वो सटक जाना, निकल जाना। तो ये मुनाफिकीन की अलामत थी, जब इस्लाम की इज्तिमाई खिदमात के लिए उन्हें बुलाया जाता था तो वो अव्वल तो आते नहीं थे, अगर आ जाते थे ताकि उनका नाम हाजिरी लग जाए, बस रोल कॉल हो जाए, फिर वो वहां पे रह नहीं पाते थे, बड़ा उनको नागवार लगता था। फिर क्या करते थे कि कोई ना कोई बहाना करके, छुप छुपा कर, एक दूसरे के पीछे छुप कर वो वहां से जो थे वो निकल जाते थे। तो यहाँ पर भी यही बात जो है वो बताई जा रही है कि मुनाफिक जो है वो आपकी महफिल से जो है वो इजाजत के बगैर खिसक जाते हैं। ऐसा होता है ना इज्तिमाही कामों में, एक को कोई उजर है तो दूसरा कहता है मेरे भी इसके साथ ही जाना है, मेरी भी राइड इधर है, मुझे भी मुश्किल है, मुझे भी घर में ये काम है। तो जो है वो बाज लोग दूसरों की आड़ लेते हैं, चुपके से वहां से सटक जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए जो है वो निकल जाते हैं। ये तसल्लु ना, चल देते हैं चुपके से, खिसक जाते हैं, मिनकुम तुम में से। लिवाजा, एक दूसरे की आड़ लेते हुए, पनाह लेते हुए। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बस चाहिए कि वो डरे। हा ज़ाल रा का मतलब होता है डरना। फलयहज़र, बस चाहिए कि वो डरे। अल्लाज़ीना, वो लोग, युखालिफूना, जो मुखालफत करते हैं, अन अम्रही, इनके हुक्म की। तो जो लोग रसूल अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको डरना चाहिए। अन तुसीबहुम, कि कहीं पहुंच ना जाए उनको फितनतुन, कोई फितना, कहीं वो किसी फितने में मुब्तिला ना हो जाए, कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ओ युसीबहुम, या पहुंचे उनको अजाबुन अलीम, कोई दर्दनाक अजाब। तो अब यहाँ पे वो लोग जो रसूल की नाफरमानी करते हैं, अब उन्हें जो है वो डराया जा रहा है, उन्हें जो है वो मलामत की जा रही है। तो यहाँ पे आफत से क्या मुराद है कि उन पर कोई आफत ना आ जाए, फितना ना आ जाए। मुफस्सरीन कहते हैं कि दिलों की कजी, दिलों की टेढ़, क्योंकि इंसान को जो चीज ईमान से महरूम कर देती है वो है रसूल की मुखालफत और सरताबी। तो ईमान से महरूमी और कुफर पर खात्मा, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अन तुसी बहुम फितना और युसी बहुम अजाबुन अलीम, या फिर वो हमेशा हमेशा के अजाब के जो है वो मालिक बन जाए, यानी उन पर आ जाए दर्दनाक अजाब। तो रसूल अल्लाह के तरीके और सुन्नत जो है उस पर चलना चाहिए, सीरत का मताला करना चाहिए। कुरान को समझ नहीं सकते सीरत के मताले के बगैर। और कुरान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो थी क्या थी, आप चलता फिरता कुरान थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसा किया जो हमारे तरीके में पर नहीं है वो मरदूद है। और आखिरी आयत है, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। खबरदार सुनो, आसमानों जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। कद यालमु मा अंतुम अलैह, तुम जिस भी रविश पर हो अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम मुखलिस मोमिन हो या फिर मुनाफिक, तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान और इखलास है या फिर निफाक और शिर्क। कद यालमु मा अंतुम अलैह, अल्लाह खूब जानता है कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारा जाहिर और बातिन क्या है। وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ। وَيَوْمَ, और जिस दिन, और मुराद है कयामत का दिन, युरजाउना इलेही, कि वो लोग उस अल्लाह की तरफ पलटाए जाएंगे, फयुनब्बेहुम, फिर वो उस दिन इनको बता देगा, बिमा अमिलू, कि वो क्या कुछ करके आए हैं, उनके कैसे अमाल हैं, उनकी कैसे बातें थी, उनका कैसा किरदार था। और अल्लाह ताला जब उनकी पेशी होगी, उनका सारा कच्चा छटा, सारा उनका किया धरा उनके सामने ले आएगा, उनके सामने रख देगा। और अल्लाह क्यों ना रखे, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखता है, अल्लाह हर चीज से बाखबर है। तो ये आखिरी आयत जो है, ये कुफर, शिर्क और निफाक करने वालों के लिए एक तंबीह है, ये एक धमकी है कि तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारी हरकत अल्लाह से पोशीदा नहीं है, अल्लाह के इल्म में है, और तुम्हारे इन्हीं इखलाक और किरदार के मुताबिक अल्लाह कयामत के दिन जो है वो फिर तुम्हें पकड़ेगा। तो ये था प्यारी बहनों हमारा आज का सबक, और इससे हमारी सूरत नूर जो है ये मुकम्मल होती है। और आखिरी आयत जो है ये इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि जब कायनात में जो कुछ है आसमान और जमीन में वो अल्लाह का है, तो मुझे और आपको भी अपने आप को अल्लाह की सपुर्दगी में देना चाहिए, अल्लाह की अताअत में देना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, अल्लाह का अताअत गुजार बंदा बनना चाहिए। और ये है वो सूरत जिसके बारे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों ने कहा कि अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को सूरत नूर की तालीम दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने वाला बनाए, नेकियों में आगे बढ़ाए, हमें हया दे, अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाला, और जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने वाला, और खास तौर पर जो है वो इस सोसाइटी में, इस माहौल में रहते हुए जहां बड़ी बेहयाई है, बड़ी बेपर्दगी है, तो हम अपनी इज्जत, असमत, निगाहों की, दिल की, जबान की, कानों की, आंखों की, सबकी जो है वो हिफाजत कर सकें। दयारे यार का सारा सफर अनोखा था, दयारे यार का सारा सफर अनोखा था, कदम कदम पे नया दे के इम्तहान गुजरे, ए दिल संभल कि किसी को हिसाब देना है कि जिंदगानी के लम्हे कहाँ कहाँ गुजरे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।